أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أشد شيعتنا لنا حبا يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم السيف الماء الباردة. مومنین، مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مسلسل یہ توفیق عنایت کرتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی عنوان سے اپنے آپ کو مشغول ذکر محمد و آل محمد کر لیا کرتے ہیں. یہ اس کی توفیق خاص اور اس کی بہترین اور نیک ترین توفیقات میں سے ایک توفیق ہے، اور یہ ایک ایسی توفیق ہے کہ جو مزید اور توفیقات کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. پروردگار عالم کی رضائیں ان لوگوں کی شامل حال ہو جاتی ہیں کہ جو ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے امر کو زندہ کرتے ہیں، ان کے کلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں، اور ان کے نورانی کلام سے فیض یاب ہوتے ہیں، اپنے دل کے ایمان کے نور میں اضافہ کرتے ہیں. مسلسل ہمارا جو عنوان گفتگو تھا وہ اختیارات و تصرفات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تھا، اور چند ایک عرائض آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا موقع ہمیں میسر آیا. انشاءاللہ آج کی گفتگو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی، اور امید ہے کہ پروردگار، یقین ہے ہمیں کہ پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمائے گا، اس لیے کہ ان اذکار پہ، اس ذکر پر، ان بیانات پر مہر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح سے ثبت ہے کہ ہم نے مصائب کا ذکر بار بار کیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس عزا کا جو کانسیپٹ ہے اور جو مجلس عزا کا ماڈل ہے، وہ ماڈل کے جو آئمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے چلا رہا ہے، وہ جو ماڈل ہے وہ مصائب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرنے کا ہی ایک حوالہ ہے کہ مجلس عزا وہی کہ جس میں مصائب ذکر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہو، ذکر مصائب سید الشہداء علیہ السلام ہو، اور اسی مصائب کے ذکر کے صدقے میں یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نورانی کلام بیان کر پاتے ہیں، یا وہ احادیث کہ جو خود میراث اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے اور جو ان کا نورانی کلام ہے اسے ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ فیض بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے اور میسر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب ثقافت کے اندر جہاں جہاں پر بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے رہتے ہیں اور جو مجالس عزا کو برپا کرتے ہیں تو ابتدا میں نعی کرتے ہیں اور انتہا میں بھی نعی فرماتے ہیں. نعی یعنی کہ نعایا، نوحہ، گریہ، مصائب کا بیان، لہن کے ساتھ جو مصائب پڑھتے ہیں ان کے یہاں پر اسے نعی کہا جاتا ہے. لہٰذا ابتدا میں بھی مصائب، انتہا میں بھی مصائب، یعنی ابتدا میں سٹارٹ میں بھی مصائب، اینڈ میں بھی مصائب، درمیان میں حدیث کا بیان ہوتا ہے، تاکہ یہی عنوان ہو کہ ہم نے تو ذکر مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مجلس کو سجایا تھا، درمیان میں तबर्रुक के लिए और उनके एहयाए अम्र की नीयत से हमने अहादीस अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी बयान कर दिया। लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये मजालिस जिन्हें हम मजालिस अज़ा कहते हैं और इन्हें मजालिस अज़ा ही कहना चाहिए, यकीनन दौर तरक्की याफ्ता होता जा रहा है और जिद्दत भी आ रही है और तब्दीलियां भी आ रही हैं और तरक्की भी हम कर रहे हैं और एडवांसमेंट की तरफ, डेवलपमेंट्स की तरफ भी जा रहे हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, हमारा इम्तियाज़ हमारे मकतब का और हमारी जो हमारा जो मसलक है इसका इम्तियाज़ ये है कि जिस तरह से मजलिसें होती हैं इसी तरह से मजलिसें होती रहें, कि फ़र्श पर बैठकर सुनने वाले जिक्र सुने, मसाइब को सुनकर रोएं और इसी तरह से फ़र्श अज़ा का बिछाया जाता रहे। ये एक अमानत है, परवरदिगार हमें इसे महफूज रखने की तौफीक इनायत फरमाए कि हम इसके अंदर कोई रद्दो बदल ना करें। अज़ान मोहतरम, मैं बात को जल्दी से मौजू की तरफ ले आऊं, फिर कहीं ये ना हो कि बात कहीं की कहीं निकल जाए। अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के इख्तियारात और उनके तसर्रुफात इतने हैं, उसका बयान इतना तवील है कि जिसे समेटा नहीं जा सकता। मिसालें हैं कि चलती चली जा रही हैं, वाकयात और रिवायात हैं कि खत्म होने का नाम नहीं है, मगर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कौन सी ऐसी रिवायत, कौन सा ऐसा वाकया, कौन सी ऐसी हदीस कि जो इंसान के दिल पर लग जाए और उसके मारिफत में इजाफे का सबब बन जाए। और यह उस वक्त होगा कि जब इंसान सीखने के लिए बैठेगा और समझने के लिए बैठेगा और चाहेगा कि मैं मकाम अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम को वाकयान समझूं और मैं कबूल करूं, और जो इनका मकाम अल्लाह ने इन्हें अता किया है वो मैं चाहता हूं कि परवरदिगार आलम कुछ उसकी झलक मुझे मिल सके। पूरा इहाता तो उनकी कुनह हकीकत का इंसान कर ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी वो जहन, उसकी अकल, उसका जहन, ये सब इतना महदूद है। और ये हस्तियां हैं कि जिनकी कोई हद ही नहीं चली चलती चली जा रही हैं। इनका इल्म देखें लामहदूद, इनकी शजाअत देखें लामहदूद, इनका ईमान देखें कि जो जिसका कयास नहीं किया जा सकता, जिसे तोला नहीं जा सकता। हाँ, अगर तोलना था तो परवरदिगार आलम के हबीब ने, रिसालत माब ने इस अंदाज से अपने बंदों को समझाने की कोशिश की, एक झलक दिखलाने की कोशिश की कि लौ अन्न समावात वल अराजीना वुज़ अता फी कफ़तिन व ईमान वली फी कफ़ा ल रजह ईमान वली, कि अगर मीजान के दो पलड़े हों और उन दो पलड़ों में से एक पलड़े पर सातों तबक रख दें जमीन के, और उसी मीजान के पलड़े पर, अभी दूसरे पलड़े पर नहीं आए हैं, उसी पलड़े पर अगर सातों तबक जमीन के रख दें, सातों आसमान रख दें, तो उसका कितना वजन होगा जरा सोचिए। और दूसरे तबक पर, दूसरे पलड़े पर अगर मौलाए कायनात अलैहि सलाम का इल्म नहीं, शजाद की बात नहीं हो रही, इताद की बात नहीं हो रही और दूसरी चीजों की बात नहीं हो रही, बात सिर्फ और सिर्फ ईमान अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम की हो रही है। सिर्फ अली का ईमान दूसरे पलड़े पर रखोगे तो जिस पलड़े पर मौला का ईमान होगा लरजहा ईमान अली, वो भारी हो जाएगा। और इसी तरह की एक हदीस सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन कुरैश मोहसिन इस्लाम के लिए भी आई है रिवायतों के अंदर, कि अगर एक पलड़े पर जमीन और आसमान को रख दिया जाए और दूसरे पर ईमान हजरत अबू तालिब रखा जाए अलैहिस्सलाम, तो जिस पर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान रखा जाएगा वो पलड़ा भारी होगा। और ये वो हस्तियां हैं कि जिनके मकामात, जिनकी मंजिलतें इतनी आला और इतनी अरफा हैं कि अगर आप देखें हजरत जिब्रील अमीन, अमीन वही खुदा, रूहुल कुदस, रूहुल अमीन, जब जनाबे जिब्रील ने ये देखा, आसमान की तरफ निगाह की, कुछ अनवार नजर आए, और ये अनवार किनके थे? अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के, आइम्मे हुदा के अनवार को देखा, और उन अनवार को देखने के बाद दुआ की, बारे इलाहा इन अनवार को देखने के बाद मैं तुझसे दुआ करता हूं कि परवरदिगारा, मुस्तदरक सफीनतुल बिहार की रिवायत कहते हैं, जनाब जिब्रील, ए परवरदिगार मुझे इनकी खुदामी का शरफ इनायत फरमा। ये जनाब जिब्रील कहते हैं कि ए खुदा मुझे इन अनवार की खिदमत का मौका इनायत कर, इनकी खिदमत का शरफ इनायत फरमा। और उसके बाद फिर परवरदिगार ने दुआ कबूल तो की। अब आप देख लीजिए कि कमाल है खिदमत दरे अहले बैत है कि कितने मलाइका हैं, कितने मलाइका हैं, अनगिनत मलाइका हैं। اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جتنے مخلوقات ملائکہ خلق کی ہیں اتنی مخلوقات اور کوئی نہیں، نہ انسان اتنے خلق کیے، نہ حیوان، نہ جمادات، نہ نباتات، صرف جو پروردگار عالم نے سب سے بڑے نمبرز میں اور سب سے بڑی زیادہ تعداد میں خلق کیا جنہیں انہیں ملائکہ کہتے ہیں، انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ کتنے فرشتوں کے نام ہمیں یاد ہیں؟ ایک جبریل کا نام یاد ہے، ایک اسرافیل کا نام یاد ہے، ایک اسرائیل کا نام یاد ہے، اور ایک رضوان جنت کا نام ہے یاد۔ کتنے کتنے ملائکہ ہیں کہ جن کا ہمیں نام یاد ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ کن کن کا نام ہمیں یاد ہے؟ ہمیں نام یاد ہے جناب جبرائیل کا، کہ جو جناب مولا حسین علیہ السلام کا جھولا جھلانے والے تھے، اس لیے جبریل کا نام یاد ہے۔ ہمیں نام یاد ہے اگر اسرافیل کا، تو اس لیے کہ وہ جناب سیدہ کی چکی چلانے والے تھے، جناب میکائیل یا جناب اسرافیل، ان دو میں سے ایک، جو جناب سیدہ کی چکی چلا رہے تھے اس وقت کے جب بی بی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلاتے سلاتے، ان کا جھولا جھلاتے جھلاتے اتنی شدید تھکن کے عالم میں تھی کہ بی بی کی آنکھ لگ گئی، تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ میری کنیز فاطمہ زہرا، ان کے ہاتھ کے چکیاں چلا چکی چلا چلا کر، چکی پیس پیس کر ہاتھوں سے خون برآمد ہو گیا، وہ ہاتھ کے جس کی ایک انگلی اگر اشارہ کر دیتی تو وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا، کہ جس پر ایمان، جس چیز پر ایمان بنو نجران کے عیسائیوں کو بھی تھا اس بات پر یقین، وہ ہاتھ چکیاں پیس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جن ہاتھوں میں اللہ نے نظام رکھا ہے، وہ ولایتیں اور وہ اختیارات رکھے ہیں کہ جو اختیارات ہر عام بشر کے پاس نہیں ہیں، وہ اتنے بڑے اختیارات رکھنے والا ہاتھ حضرت سیدت النساء العالمین سلام اللہ علیہا کا چکی چلا رہا ہے، یہاں تک کہ خون جاری ہو گیا بی بی کے ہتھیلی مبارک سے، دست مبارک ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے خون برآمد ہوا۔ خدا نے کہا جاؤ میکائیل تم چکی چلاؤ، جاؤ جبرائیل تم حسین کا جھولا جھلاؤ، نہ حسین اٹھنے پائیں اور نہ میری کنیز زہرا اٹھنے پائیں، ان دونوں کے آرام میں ذرہ برابر کا خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دین کی خدمت کرتے کرتے اور گھر کے کاموں سے بھی تھک جائیں تو پروردگار عالم ملائکہ کو ان کی خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے، لہذا یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ بڑی اعلی منزلت والی ہستیاں ہیں۔ خیر ہم آگے بڑھے بات کو، لہذا جو رضوان جنت ہے حسنین علیہ السلام کا درزی بن کر آ گیا، ان کا نام ہم سب کو یاد ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر تم اپنی پہچان کائنات کے سامنے کروانا چاہتے ہو، چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بھول نہ جائے اور تمہارا نام اونچا ہو جائے، تو اپنا نام اہل بیت کے نام کے ساتھ جوڑ لو۔ یہ اتنے بلند نام ہیں، پروردگار عالم نے ان ناموں کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ اگر تم نے اپنا نام ان کے ساتھ بھی جوڑ لیا، اگر تم نے خود کو ان سے منسوب کر لیا، تو اسی طرح سے تمہیں بھی پروردگار عالم کچھ نہ کچھ بلندی ضرور عطا کرے گا۔ ان کے منصب کے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، ان کی فضیلت کے اندر ان کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرنا، لیکن وہ جتنی بلند ہستیاں ہیں اتنی بلند تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن یقیناً فرشتے کون یاد رکھتا ہے؟ کتنے فرشتے ہیں، کن کن کا نام ہمیں یاد ہے؟ ایک فطرس کہ جو آ گیا، جسے مل گئی شفا حسین ابن علی علیہ السلام کے جھولے سے، ان کا نام یاد ہے۔ سلسائیل کا نام پھر کم یاد ہے، دردائیل کا نام پھر کم یاد ہے، فطرس کا نام بڑا یاد ہے، رضوان جنت کا نام ہمیں یاد ہے، جبرائیل کا نام یاد ہے، میکائیل کا نام یاد ہے۔ یہ افراد اور ستاروں کے اندر، وہ ستارہ دو جو درے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ اتر آیا، اس ستارہ زہرہ کا نام ہم سب کو یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدامی اہل بیت کے لیے منتخب کیا، یا پروردگار عالم نے اسے یہ شرف عنایت کیا کہ یہ والا ستارہ جائے گا اور عقد حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا پیغام لوگوں کو سمبولک طریقے سے سمجھا دے گا اور سنا دے گا۔ اب عزیزان محترم ذرا یہ دیکھیے کہ جناب جبریل کہہ رہے ہیں کہ اے خدا مجھے ان کی خدامی کا شرف عنایت فرما، اور پھر دیکھیے جبریل کی کیا اڑان ہے اور جبریل کی کیا ترقی ہے۔ اب آ جائیے، مولا سید سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بولا میں ایک تاجر ہوں اور ہر سال ہمیں 5 لاکھ درہم یا 5 لاکھ دینار کا نقصان ہوتا ہے ہمارے کاروبار کے اندر، اس لیے کہ تغیانی ہو جاتی ہے، ہماری طرف جو دریا ہے سمندر ہے اس میں تغیانی ہو جاتی ہے، اس کا لیول اوپر آ جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، बारिशों की वजह से या पीछे से आने वाले पानी की वजह से वो उसका लेवल बढ़ जाता है, लिहाजा शहर में या हमारे खेतों में या हमारे कल्टीवेटिंग लैंड्स के अंदर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि हमें हमारी जो कमाई है और जो हमारा सामान है वो सारा का सारा डूब जाता है, पानी की नजर, सैलाब की नजर हो जाता है, हमें 5 लाख दिरहम का हर साल नुकसान होता है। इमाम अलैहि सलाम ने मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम आका अलैहि सलातो वस्सलाम मौला अपने दस्ते मुबारक की अंगुश्तरी उठा निकाल कर देते हैं उन्हें, और उस ताजिर को कहते हैं जाओ और जाने के बाद ये अंगूठी समंदर के हवाले कर देना, समंदर के अंदर डाल देना, और फिर ये अब तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। वो ताजिर कहता है कि मैंने मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम आका व मौला से वो अंगुश्तरी ली, अंगूठी ली, और उसे ले जाकर पानी के हवाले कर दिया। आज तक इतने साल गुजर गए, आज तक उस दरिया के अंदर कभी तुगयानी नहीं हुई। ये उस अंगूठी का कमाल है कि जो दस्ते मौला इमाम सैयद सज्जाद अलैहि सलाम से मंसूब हो गई। तो जब उस अंगूठी का ये आलम है तो खुद मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम की फजीलत का क्या आलम होगा। यह है वो मकाम और यह है इनकी वो मंजिलत कि जो अपने आप को इनसे मंसूब करता चला जाएगा वो भी साहिब फजीलत और साहिब करामात और साहिब कमालात होता चला जाएगा। आइए सरकार अबुल हसन मौला वाका हजरत अली इब्ने मूसा रजा अलैह अफजल तहियत व सना अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद मौला की एक हदीस है। और किस तरह से मलाइका, अब देखिए हमने वो मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम वाला जो हज वाला वाकया था वो आपकी खिदमत में अर्ज किया कि उसके अंदर कैसे मलकुल मौत इमाम अलैहि सलाम का मुती और फरमा बरदार है। यहां पर मौला रजा अलैहि सलाम की खिदमत के अंदर मलाइका किस तरह से आपकी फरमा बरदारी कर रहे हैं और आपकी ताजीम और आपके एहतराम के अंदर मसरूफ अमल है, उसकी एक झलक देखिए। अंदाज यूं है कि मौला रजा अलैहि सलाम अपने एक सहाबी की तीमारदारी के लिए और उसकी अयादत के लिए, उसकी खबरगिरी के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए मौला तशरीफ लेकर आए। वो मरजुल मौत के अंदर मुबतला था, इतना शदीद बीमार था कि ऐसा लग रहा था कि ये अभी मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, लेकिन मौला रजा अलैहि सलाम के तशरीफ लाने से उसकी सेहत ठीक हो गई, उसकी तबीयत ठीक हो गई और मनाकिबे इब्ने शहर आशूब हो गया और बहुत सारी किताबें बिहारुल अनवार के अंदर खुद ये वाकया मौजूद है। लेकिन अर्ज खिदमत यह है कि मौला अलैहि सलाम, मौला रजा अलैहि सलाम जब उसके पास आए, उसके घर तशरीफ लाए आका, तो जैसे ही मौला के कदम में मुबारक उसके घर में पड़े उसकी सेहत ठीक हो गई और वो बैठा। वो कि जो सकरातुल मौत जैसी कैफियत के अंदर था, एक मर्तबा के जो आंखें ही नहीं खोलता था, कि जो सोता रहता था और जिसकी आंखें बंद रहती थी और बिस्तर पर ही लेटा रह रहा था, जैसे ही इमाम आली मकाम हजरत मौला वाका अबुल हसन मौला बाबुल हवाई जली इब्ने मूसर रजा अलैहि सलातो वसलाम तशरीफ लेकर आए, वो खड़ा हो गया एहतराम से और बैठ गया उठकर और इमाम अलैहि सलाम की खिदमत में कहता है, मौला ने आकर पूछा कि कैफा असबहता, तेरी तबीयत कैसी है, कैसा महसूस कर रहा है। तो वो सहाबी कहता है कि मौला उसका आलम क्या पूछते हैं कि जो मौत को देखकर वापस आया है। ये तो मौला आप तशरीफ ले आए, ये आप तशरीफ ले आए जिससे मैं ठीक हो गया, मुझे बाकायदा महसूस हो रहा है कि आपकी आमद से मेरी तबीयत बहाल हुई है। लेकिन मौला ये बताइए कि उसका आलम क्या होगा कि जो मौत को देख के वापस आ रहा है। इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया तूने मौत को नहीं देखा अभी, अभी तो तू एक ऐसी शय को देखकर आ रहा है कि जो मौत से तेरा तारुफ करवाने वाली थी, मौत तक तू अभी नहीं पहुंचा था, मौत से मिलाने वाली शय से तू मिलकर आ रहा है। लेकिन इमाम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दो ही तरीके के लोग हैं कि अन्नासो किस्मान या कि अन्नासो रजुलान, इस तरीके से रिवायत के जुमले हैं कि इंसान की दो किस्में, दो ही तरीके के लोग हैं इंसानों में, मुस्तरीहुन बिल मौत वल मुस्तराहु मिनहू। एक वो किस्म है लोगों की कि जो मौत से राहत ले लेते हैं, मौत उनको आके राहत दे देती है। एक किस्म इंसानों में से उन लोगों की है कि जिनको मौत आती है राहत देने के लिए, गौर से सुनिएगा, और दूसरी किस्म उन लोगों की है कि जिनकी मौत से दूसरे लोग राहत सुकून में आ जाते हैं। गौर कीजिएगा, एक तरीका, एक किस्म लोगों की वो है कि जो मौत से सुकून में आ जाते हैं, खुद सुकून में आ गए, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी मौत दूसरों के लिए सुकून बन जाती है। अल्लाह अकबर, परवरदिगार बचाए ऐसी मौत से कि जिस मौत के बाद दूसरे सुकून में आ जाए, कहे कि अच्छा हुआ जान छूटी चला गया। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तू चाहता है कि पहली किस्म में से तेरा शुमार हो, पहली किस्म में से तेरा शुमार हो, तो तू तजदीद अहद कर परवरदिगार आलम से, हम अहले बैत की विलायत के जरिए से, हम अहले बैत की इमामत के इकरार के जरिए से, हम अहले बैत की मोहब्बत के जरिए से परवरदिगार आलम से तजदीद अहद कर, अपने प्रॉमिस को रिन्यू कर। कौन से प्रॉमिस को रिन्यू कर, और रिन्यू क्यों कर, आज से प्रॉमिस क्यों नहीं कर? एक प्रॉमिस है कि जो तूने पहले किया है, जिसे रिन्यू करने का कहा जा रहा है, और वो कब हुआ था मैं उस जानिब नहीं जा रहा, वरना बात कोई और शुरू हो जाएगी। लेकिन अपने तजदीद अहद करो, हम अहले बैत की विलायत के जरिए से। तकूनो मुस्तरीहुन बिल मौत, तो याद रखना फिर तेरा शुमार उन लोगों में से हो जाएगा कि जिन्हें मौत आती ही राहत देने के लिए है। लेकिन अज़ान मोहतरम, ये तो आपने हदीस समाप्त फरमा ली। इस सिनेरियो के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ कि जो दरमियान में मैं उससे गुजर गया, मैंने सोचा कि पहले हदीस आपको बयान कर ली जाए और उसके बाद वो जो हुआ वो आपको सुना दिया जाए। जब ये बैठा हुआ था तो इसने इमाम अलैहिस्सलाम को देखा कि मौला अपनी मौला या तो खड़े हुए हैं, मौला तशरीफ फरमाए, और जब मौला उसकी अयादत कर रहे हैं अपने उस सहाबी की, तो देखा उस सहाबी ने कि मौला रजा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द मलाइका की एक फौज है कि जो खड़ी हुई है, और जब से मौला रजा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए हैं वो खड़े ही हैं, एक पाव पे नहीं खड़े होते जिसको कहते हैं, वो खड़े हुए और बैठते नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम से उस सहाबी ने कहा, अब सहाबी का भी एक मरहला होगा, सहाबी को आम नहीं होगा कि इमाम उसकी अयादत के लिए आ रहे हैं, इमाम के आने से उसको शिफा मिल रही है, जब शिफा मिल रही है तो बता रहा है कि मौला मैं यहां तक गया था और यहां से वापस आया हूं, फिर मौला उसे बताते नहीं तू यहां तक नहीं गया था, तू मौत से नहीं बल्कि मौत से मुतारिफ कराने वाली चीज से मिलकर आ रहा है। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम उसे यह तोहफा अपनी हदीस की सूरत में इनायत भी कर रहे हैं कि मुस्तरीहुन बिल मौत वल मुस्तराहु मिनहु, यह भी फरमा रहे हैं। लेकिन वो साहब ये कहता है कि मौला ये बैठते नहीं है, अगर आप इन्हें कह देंगे तो फिर ये बैठ जाएंगे, ऐसा लगता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल तूने बजा कहा, और इमाम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें इशारा किया तो फिर वो बैठे, या इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं तो फिर उसके बाद मलाइका बैठे। और उन लोगों में से किसी एक ने कहा कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम खड़े रहे तो ये अबद खड़े रहेंगे, ये बैठेंगे नहीं, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इन मलाइका को, इन फरिश्तों को इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की, इमाम बरहक की इताअत का ऐसे हुक्म दिया है कि अगर इमाम मासूम खड़ा है ये भी खड़े रहेंगे, इमाम मासूम बैठ जाएगा तो ये भी बैठ जाएंगे, इमाम मासूम हरकत करने लगेंगे तो ये मलाइका भी उनके साथ हरकत करने लगेंगे। इतने मुतियो फरमाबरदार कि इमाम अलैहिस्सलाम के हरकत से हरकत में आ जाने वाले, सुकूनत से सुकून में आ जाने वाले। खैर, लेकिन अजीजा ने मोहतरम, ये उस आलम उस शख्स का आलम है कि जो अहले बैत अथार से अपना राबता इतना अच्छी तरह से जोड़ता है कि फिर मौत अगर आती भी है ना तो उसके लिए खौफ करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये उसके लिए राहत और आराम और सुकून लेकर आती है। ये किसका आलम है? उसका आलम कि जो अपने तजदीद अहद करे, किस चीज के जरिए से खुदा से तजदीद अहद करे, अहले बैत अथार की इमामत, उनकी विलायत, उनकी मोहब्बत के जरिए से, वो इख्तियार जो खुदा ने उन्हें अता किया है, वो तसर्रुफात जो खुदा ने उन्हें अता किए हैं, उस पर ईमान रखे। तो ये याद रखे इंसान कि जिनकी मोहब्बत का दम भरता रहेगा, वक्त आखिर वो उनकी मदद के लिए जरूर आते हैं। उनकी विलायत का ईमान रखना, पर ईमान रखना, उनके इख्तियारात, उनकी इमामत पर ईमान रखना। और फिर मौला रजा अलैहिस्सलाम ही की एक हदीस वो सुनाकर फिर मैं दोबारा से फजीलत के बाब की तरफ आ जाना चाहता हूं, और कुछ एक दो वाकयात आपकी खिदमत में इनकी अफजलियत के एतबार से बतलाना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने उन्हें तालीम दी जिन्होंने और लोगों को तालीम दी, कैसे हुआ। अब वो हम आते हैं उस तरफ, लेकिन पहले यह जुमला, एक हदीस जो हमने सरनामा कलाम में तिलावत करने का शरफ हासिल किया, اور وہ حدیث کیا تھی؟ مولا واقع امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اشد شیعتنا لنا حبن، ہمارے شدید ترین شیعہ، شدید شیعہ کون ہوتا ہے کہ جو شدت شدید شیعہ کون ہوتا ہے، اسی حدیث میں لکھا ہے، ان اشد شیعتنا لنا حبن، کہ جو شدت سے جتنی شدت سے ہم سے محبت رکھے گا وہ اتنا شدید شیعہ ہے ہمارا، اتنا پکا مضبوط شیعہ ہے. حبن ان اشد شیعتنا لنا حبن یکون خروج و نفس ہی، اس کے نفس کا اس کے بدن سے خروج، اس کی روح کا اس کے بدن سے جدا ہو جانا، یکون خروج و نفس ہی کا شرب احدکم، بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے تم لوگوں میں سے کسی کا بھی شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی کا پی لینا، کیا کیفیت ملتی ہے اس وقت؟ بس شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینے سے جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی سکون اسے ملے گا کہ جو ان اشد شیعتنا لنا حبن ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، آٹھویں امام، انیس النفوس، سلطان العرب والعجم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شدت کے ساتھ ہم سے تعلق رکھے گا تو وہ اس طرح سے جائے گا کہ جیسے شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا کوئی پی لے، کتنا سکون ملتا ہے، بلکہ اب تو وہ تڑپتا ہے کہ وہ پانی مجھے مل جائے، اتنی شدید گرمی کا دن ہے. اب آ جائیے ہم بات کو ایک مرحلہ اور آگے بڑھا دیں، اور اہل بیت اطہار کے اختیارات و تصرفات میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ورنہ تو اگر موت کے سلسلے میں چلے گئے تو وہاں پر خود ان کے وہ اختیارات و تصرفات ہیں کہ جنہیں الگ سے بیان کیا جا سکتا ہے، مگر چونکہ بات کو آج کی حد تک میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس کے اندر سمیٹ دینا چاہتا ہوں، لہذا خواہش یہ ہے کہ ایک آدھ دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور بات کو ختم کر دیا جائے. آصف ابن برخیہ کی بات ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کا تسلط جنات پر، شیاطین پر، ملائکہ پر، انسانوں پر، طیور پر، ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس مجھے لا کر دے سکتا ہے اور کتنی دیر میں، تو قال العفریت من الجن، وقال العفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا کہ میں آج کے اس دن کے اختتام پہ میں لا کر دے سکتا ہوں، کہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے لا کے دے سکتا ہوں. جناب آصف برخیہ نے، کہ جو جانشین ہیں حضرت سلیمان کے، وہ یہ کہتے کہ نہیں، میں آپ کو پلک جھپک کے لا کے دے سکتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے، اور وہ آپ نے واقعہ پچھلے دنوں سماعت فرما لیا. یہ کیسے ہوا کہ جناب سلیمان کے اس جانشین کے پاس ایک حرف تھا 73 حروف میں سے اسم اعظم کے، جو 73 حروف ہیں، 73 حروف اسم اعظم کے جو ہیں، ان میں سے ایک حرف تھا جناب آصف برخیہ کے پاس، اور وہ لے آئے. اور اہل بیت اطہار وہ ہے کہ ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، باقی 72 پروردگار عالم نے انہیں بھی عطا کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. 73 خدا کے پاس ہیں، 72 اہل بیت کے پاس ہیں، اور جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، اور پھر باقی انبیاء کے پاس، کسی کے پاس 5 تھے، کسی کے پاس 7 تھے، کسی کے پاس 11 تھے، کسی کے پاس 12 تھے، کسی کے پاس 15 تھے، کسی کے پاس 20 تھے، کسی کے پاس 27 تھے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور وہ پوری روایت ہے کہ جس روایت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان انبیاء کے پاس، ہر ایک نبی کے پاس کتنے اسم اعظم کے حروف تھے، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے روایت کے اندر. میں اس روایت کی طرف نہیں جا رہا، مگر بلکہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے انہیں اسم اعظم کا اتنا علم عطا کیا تو اتنا مرتبہ تھا، جب مرتبے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں اور اسم اعظم کے حروف بھی عطا کیے گئے. اور اس کی دلیل کے لیے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہو پھر وہ علم بانٹا کرتا ہے اسے، کہ جس کے پاس علم کی پیاس ہو، جو علم چاہتا ہو لینا اسے دیا کرتا ہے. اب جناب خضر آپ دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے جناب خضر کے پاس، اور پروردگار عالم حکم کر رہا ہے جناب موسیٰ کو، جاؤ اور جناب خضر سے پڑھو اور ان سے علم حاصل کرو. ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد نبوی के अंदर रिसालत में आप तशरीफ फरमाएं। एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा शख्स दाखिल होता है मस्जिद नबवी के अंदर, अजीब अंदाज है लिबास पहनने का और मदीना वालों के पहनने ओढ़ने का अंदाज नहीं है। तो ये सारे अफराद देखते हैं कि शायद कोई मेहमान है रिसालत में आपका, और रसूल की खिदमत में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दे तो मैं कुछ सवालात लेकर आया हूं, उनके जवाब आपसे चाहता हूं। और आलम यह था कि हुजूर अकरम, हुजूर सरवर कायनात, हुजूर अकरम के दोनों जानुओं पर एक एक नवासा बैठा हुआ था। रिसालत में आपने फरमाया कि आज एक काम करो, मेरे इन दोनों नवासों में से किसी एक का इख्तियार करो, किसी एक को इख्तियार करो, और जो सवाल मुझसे करना चाहते हो वो इनसे कर लो। अब रिसालत में आपने कहा था, वो आने वाले बुजुर्ग एक मरतबा कहते हैं कि बिल्कुल या रसूल अल्लाह, जो आपका हुक्म सराखों पर। और उसके बाद इमाम हसन मुश्तवा अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और उंगली पकड़कर उन्हें मस्जिद नबवी के एक गोशे में ले जाते हैं और कुछ गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहता है। जैसे बात खत्म हो जाती है, जाने लगते हैं, तो रसूल की अमानत नवासा रसूल के हवाले करते हुए जनाब ये बुजुर्गवार जो है वो जाने लगते हैं और खुदा हाफिज कहते हैं। जैसे मस्जिद नबवी के दरवाजे से रुखसत होते हैं तो एक मरतबा रिसालत में आप सवाल करते हैं, ये बताओ तशफी हो गई तुम्हें, आपको तसल्ली और इत्मीनान हुआ? तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, बिल्कुल वैसा ही इत्मीनान और वैसी ही तशफी और तसल्ली हुई मुझे कि जैसी तसल्ली आपके जवाबात में हुआ करती थी, वैसा ही सुकून और इत्मीनान और कनाअत मुझे मिली इनके जवाबात में जैसे आपके जवाबात से मुझे तस्कीन होती थी। और वो वहां से चले गए मुस्कुराकर। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन्हें तो हमने, इस बुजुर्गवार को तो हमने नहीं देखा मदीना मुनव्वरा में कभी, और आपने तो खुद देखा कि इनके पहनने ओढ़ने का अंदाज भी हम जैसा नहीं था, ये कौन थे या रसूल अल्लाह? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं कि ये जनाब खिजर अलैहिस्सलाम थे और ये अक्सर इस तरह से हमारी बारगाह में आया करते हैं और अपने सवालों के जवाबात हमसे लेकर जाया करते हैं। जनाब मूसा वो कि जिन्हें नबी खिजर पढ़ाएं, नबी मूसा वो कि जिन्हें हजरत खिजर अलैहिस्सलाम पढ़ाएं, और जो अपने इल्म की प्यास अहले बैत अलैहिस्सलाम से बुझा रहे हैं हजरत खिजर, उनका मकाम क्या होगा? यानी हजरत मूसा को पढ़ाने वाले खिजर और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को इल्म अता करने वाले अहले बैत, रसूल अकरम, नवासाए रसूल, बारह इमाम अलैहिस्सलाम। लिहाजा ये इनका मकाम और इनका मर्तबा है। अब अगर कोई ये कहे कि हम ही जैसे तो हैं, हम ही जैसे एक आम इंसान थे, हम ही की तरह से आकर जिंदगी गुजारी और हम ही की तरह से इनका इंतकाल हुआ, ये शहादत हुई और दुनिया से हम ही की तरह से चले गए, अब ये जो मुवाजना है ना, हमारे जितने अकाइद का बिगाड़ शुरू होता है वो वहीं से होता है कि जब हम अपने आप को अहले बैत से कंपेयर करना शुरू करते हैं। अहले बैत अथार कौन है, हम कौन है, ये सुन लीजिए मिसाल के जरिए से, ताकि एक बात बहुत अच्छे से वाजे हो जाए। जब हमारी क्लास के अंदर कोई टीचर आता है, सर हो या मिस हो या टीचर हो, पढ़ाने के लिए आए, ज्योग्राफी कह लीजिए, इंग्लिश कह लीजिए, कोई जबान कह लीजिए, कोई लिटरेचर कह लीजिए, कोई दुनिया का इल्म तसव्वुर कर लीजिए, अगर वो इल्म हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और अगर हम ये कहें कि भाई क्या हो गया, हम इन्हीं की तरह के तो हम भी इंसान हैं, ये भी हमारी तरह के इंसान हैं, हम भी इन्हीं की तरह के हैं, हम में और इनमें फर्क क्या है? हम में और इनमें बहुत बड़ा फर्क है, और वो बहुत बड़ा फर्क ये है कि ये पढ़े लिखे हैं, हम अभी अनपढ़ हैं, ये पढ़ाने के लिए आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं स्कूल में, इंसान वो भी हैं, इंसान हम भी हैं। मगर अब देखें क्या अर्ज करें हम आपकी खिदमत में, बहुत सारी बातें इशारा और किनाये के अंदर होंगी, बहुत तफसील के अंदर हम नहीं जा सकते, बहरहाल वक्त भी महदूद है, लेकिन अजान मोहतरम पढ़ाने वाला पढ़ने वाला बराबर नहीं हो सकता, जो जानता है और जो नहीं जान सकता, नहीं जानता वो बराबर होता है। हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, नहीं क्या? यहां पे ये जो इस्तेफाम है, इस्तेफाम इनकारी है, ये तलब फहम के लिए नहीं पूछा जा रहा, ये इनकार करने के लिए कहा जा रहा है। क्या, किस बात का इनकार किया जा रहा है? इस बात का इनकार करने के लिए कहा जा रहा है कि याद रखो, जो जानता है और जो नहीं जानता वो बराबर नहीं हो सकते। ہم وہ کہ جو آیتیں نازل ہوں اس پر عمل کرے تو مومن بنے، اور جو عمل کرے اور اس کا کیا ہوا عمل آیت قرآن بن جائے وہ امیر المومنین ہوتا ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ خدا کا حکم آئے، ہمیں سکھایا جائے، ہم سیکھ کر اس کی عبادت کریں، اور اہل بیت وہ کہ جو تسبیح سکھائیں ملائکہ کو، ہم وہ کہ جو احکام شریعت کے پیچھے پیچھے چلے، ہم وہ کہ جو حق کے پیچھے پیچھے چلے، اہل بیت وہ کہ حق جن کے پیچھے پیچھے چلے، اور ہم اور آپ وہ کہ جو اس وقت تک طاہر نہ ہو کہ جب تک کوئی مطہر حاصل نہ ہو جائے ہمیں۔ مطہرات کی فہرست تو آپ نے توضیح المسائل میں پڑھی ہوگی، یاد بھی ہوگی بہت سو کو، تو جب تک مطہر ہمیں نہ ملے ہم طاہر نہیں ہو سکتے۔ اور اہل بیت وہ ہیں کہ جب جناب ام ایمن مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد رسالت باب نے کہا کہ میرا نواسا میرے حوالے کرو، تو جناب ام ایمن نے کہا کہ ایک لہجے کے لیے بس رک جائیے، میں آپ کے نواسے کو غسل ولادت دلا دوں تاکہ پاک کر کے آپ کو پیش کر سکوں، تاکہ آپ کے ہاتھ نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن تم اسے کیا پاک کرو گی جسے خدا نے پاک کر کے زمین پر بھیجا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں خدا پاک کر کے یطہرکم تطہیرا کی سند دے کر بھیجے، اور ہم وہ کہ اس وقت پاک ہوں گے کہ جب پانی مل جائے گا پھر ہم پاک ہوں گے۔ لہذا یہ نقص ہے، یہ ڈفرینسز ہیں، یہ فرق ہے مراتب کا، اور پھر ہمارے اور ان کی کیفیت کے اندر کیا فرق ہے ظاہری طور پر وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی طرف میں خود عمدن اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جو پڑھائیں، جو سکھائیں دین، بلکہ جن کو فالو کر لینا دین، وہ اہل بیت، اور ہم جو دین کو فالو کرے تو ہم دیندار، وہ دین ہے ہم دیندار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی ایک مثال اور ہے ہمارے پاس۔ رسالت ماب تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، اور حضور سرور کائنات نے ہمیشہ اپنی حیات طیبہ میں کوشش کی ہے اس بات کو کہ لوگوں تک اہل بیت کے مراتب کو پہنچا دیں، تاکہ لوگ اس بات سے کنفیوز نہ ہو کہ کیا فرق ہے ہم میں ان میں، اور جس کی وجہ سے پھر ہم انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگے، لہٰذا یہ تصور کرنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو ہمارے نقائص ہیں وہ انہی کے نقائص ہیں، استغفر اللہ۔ حضور بیٹھے ہوئے اور رسالت ماب ہے، مولا کائنات علیہ السلام ہے، امام حسن ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، اور ایک اور شخص ہے، یہ پانچ افراد بیٹھے ہوئے، اور رسول نے مسجد نبوی کی زمین سے ایک حجر کو، ایک کنکر کو اٹھایا اور اپنے دستے مبارک پر، اپنی ہتھیلی مبارک پہ رکھا، اور جیسے ہی رسول نے اپنے دستے مبارک پر اسے رکھا تو وہ تسبیح کرنے لگا، پروردگار کی حمد و ثنا بجا لانے لگا۔ تو رسول نے پھر جب اس کی حمد و ثنا کا ایک سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ کنکر اٹھا کر مولا کائنات کو دے دیا، مولا نے اپنے دستے مبارک پر رکھا، وہاں پر یہ پتھر، یہ کنکر خدا کی حمد و ثنا کرتا رہا، یہاں تک کہ آگے بڑھا سلسلہ، امام حسن علیہ السلام کو یہ کنکر دیا، ان کے دستے مبارک پر بھی حمد و ثنا جاری رہی، پھر یہ کنکر آیا مولا حسین علیہ السلام کے دستے مبارک پر، وہاں بھی حمد و ثنا جاری رہی، یہاں تک کہ مولا حسین علیہ السلام پہ آ کے سلسلہ رک گیا، اور رسول اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ وہ جو پانچواں شخص بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے بھی دے دے کنکر، میں بھی اپنے ہاتھ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے رسول کو دیکھا، رسول نے آقا کو اشارہ کیا، اور نواسے نے وہ کنکر رسول کے اشارے پر اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ کنکر اس نے ہاتھ پر رکھا، تسبیح اور حمد و ثنا کا سلسلہ رک گیا، یہاں تک کہ وہ ذرا سا افسردہ ہو کر، تھوڑا سا تیش میں اور غضب میں آ کر کہتا، یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھوں پہ آ کے کیوں نہیں بولتا؟ اس کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چار ہستیوں کی جیسا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری فضیلت بھی ان چاروں جیسی ہی ہے، یا میرا مقام بھی ان چاروں جیسا ہی ہے، یا میں ان چار جیسا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنا سوال اس کنکر سے پوچھ لے، یہ کنکر تجھے جواب دے دے گا، حمد و ثنا نہیں کرے گا، جواب دے دے گا۔ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम दो सना नहीं कर रहा उसके हाथों पे आके, हम दो सना नहीं कर रहा वो कंकर, लेकिन रिसालत माप कह रहे कि तू इस सवाल का जवाब इस कंकर से ही पूछ ले, ये कंकर तुझे खुद बता देगा। यहां तक कि उसने पूछा बता कि तू क्यों मेरे हाथों पे आके तस्बीह करना रोक रहा है, रोक दिया तूने तस्बीह करना। कहा मुझे अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि उसके जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं के हाथों पर आकर मैं अल्लाह की हम्दो सना करने की इजाजत रखता हूं, मुझे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। या रसूल के हाथ पर आकर बात करूंगा या रसूल जैसों के हाथ पर आकर गुफ्तगू करूंगा। लिहाजा ये मोहम्मद और अली से लेकर मेहदी अज्जलल्लाहु अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अलैहिम अव्वलुत तहियत वस्सना, हमारे मौला वाका, हमारे आइम्मा अथार अलैहिस्सलाम, ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में नस है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। लिहाजा ये हस्तियां और हैं, इनकी फजीलत बुलंद है, इनका मकाम अरफा वाला है। और इंसान अपने लिए घाटे का सौदा उस वक्त करता है कि जब अहले बैत अथार को समझने के लिए अहले बैत अथार की मदद नहीं लेता, अपनी अकल चलाना शुरू करता है, कहता है कैलकुलेशन ऐसे करता है, देखें अकल ये बोलती है कि यूं यूं यूं, तो अकल शैतान ने भी इस्तेमाल की थी, अकल नूह के बेटे ने भी इस्तेमाल की थी और गलत नहीं की थी। गलत नहीं की थी मतलब ये नहीं कह रहा कि उनका अमल बिल्कुल ठीक था, नहीं, लॉजिकल जो बात कर रहे थे वो लॉजिकल तो थी। क्या लॉजिकल थी? कि ये पहाड़ मुझे बचा लेगा, लॉजिकली ठीक है, लेकिन अम्र इलाही के मुकाबले पर है, इसलिए वो डूब गया। इतने बड़े इतने ऊंचे पहाड़ पर खड़े होने के बावजूद भी कि जो पहाड़ उस दुनिया का उस वक्त का हाईएस्ट पीक था, यानी कि तूफान के अंदर कश्ती के डूब जाने का फिर चांस होता है, मगर जो बड़ी बड़ी पीक्स होती है वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा, इतना पानी आएगा कहां से। लेकिन बात उस वक्त की है कि जब नॉर्मल सिचुएशन हो, मगर जब सिचुएशन ये हो कि अल्लाह का हुक्म ये है कि आज फकत वही बचेगा कि जो इस कश्ती पर होगा, तो उसके अलावा जो कोई जिस बुलंद तरीन मकाम पर भी होगा वो हलाक हो जाएगा। इसीलिए रसूल ने फरमाया कि मसलो अहले बैती कमसले सफीनत नू, हम अहले बैत की मिसाल सफीना नू की मिसाल है, मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरीका वहावा। याद रखना जो इस कश्ती पर यानी कि अहले बैत के साथ सवार हो गया, जिसने अहले बैत के दामन को थाम लिया, नजा निजायत निजात याफ्ता हो गया, वमन तखल्लफान हा, जिसने इनकी मुखालिफत की, गरिका बहावा, डूब गया हलाक हुआ, हाथों को जोड़कर मकाम नबूवत में आकर अपनी पेशानी को इनकी डेवड़ी पर अदब के साथ झुकाकर यह पूछना चाहूंगा, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि जब हवा गरीका कह दिया था कि गर्क हो जाएगा, तो हलाक हो जाएगा कहने के लिए हवा का लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अजब नहीं रिसालत माब इरशाद फरमाए कि कुछ ऐसे होते हैं कि गर्क तो हो रहे होते हैं, मगर कोई बाहर से जाकर उन गर्क होने वालों को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन जो अहले बैत से मुखालिफत करते हैं और अहले बैत के साथ नहीं होते, वो गर्क भी होते हैं और उनका हलाक होना भी तय है। तो प्रॉब्लम कहां से आती है? जब इंसान अपनी लॉजिक को यूज करता है और ये कहता है कि भाई आई एम समथिंग, पढ़ाई की है मैंने, इतने साल मैंने फुला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए और मैं फुला फुला साइंसेस का माहिर हूं, लिहाजा ये जो मेरा इल्म है ये मैंने मेहनत से बनाया है, आई हैव मेड माई सेल्फ, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड मैन हूं मैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने अकल के हिसाब से करूं। आप अपनी अकल बिल्कुल यूज करें, लेकिन ये अकल बनाने वाला जो है ना, इस अकल को खल करने वाला, उस पर भी ईमान रखें ताकि ये अकल आपकी ठीक काम करे। वरना ऐसे भी अफराद हैं कि क्या कहा जाए, चले मैं बात को मुख्तसर करूं, और चूंकि दामने वक्त सिमट गया, सारा का सारा प्रॉब्लम वहां पर आकर शुरू होता है कि जब हम कंपैरिजन इस तरह से शुरू कर देते हैं कि जिस तरह से कंपैरिजन ठीक नहीं होता, और कयास करते हैं, लॉजिक को यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम हुआ तस्लीम, इस्लाम इज इक्वल्स टू टोटल सरेंडर। आप कहेंगे ये तो जबर है, ये तो आप मजबूर कर रहे हैं, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे, बल्कि यही है इंसान का इम्तियाज कि वो अकल इस्तेमाल करे और अपनी अकल को उन अकलों के सामने सरेंडर कर दे कि जिनसे बड़ी अकलें अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। यानी जे अल्लाह इंसान इंसान बीमार होता है तो किसी बेहतरीन के पास जाता है इलाज करने वाले। अब इंसान कहता है कि मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मुझे क्या पता कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, मैं उन अफराद के पास चला जाऊं जिन्हें अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बनाकर इस जमीन पर भेजा, यानी कि आइमा अथार अलैहिमुस्सलाम, जिनके बारे में रिसालत में आप बता गए, अव्वलहुम अली व आखिरहुम मेहदी, बस उनके बाद कोई नहीं। अच्छा, अब आ जाइए, मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश कर दूं कि लॉजिक वालों को भी रसूल ने जवाब देकर समझाने की भी जरूर कोशिश की है, जिस हद तक उनके बात समझ में आ जाए, अहले बैत अथार की फजीलत की और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की फजीलत की। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का वो मशहूर और मारूफ तरीन वाकया कि जो मदीना मुनव्वरा के अंदर 40 घरों पर एक साथ मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम जाहिर हुए, एक ही दिन 40 अलग घर एक ही वक्त पर अली को दावत हुई, मौलाए कायनात ने सारी दावतें कबूल की और 40 के 40 घरों पर मौलाए कायनात पहुंच गए, नजर आए। अगले दिन लोग पहुंचे रिसालत माँ आपके पास, या जब खबर मिली तो लोग पहुंच गए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह समझ नहीं आया, और कुछ लोग आए मुबारकबाद देने के लिए कि मौलाए कायनात की एक और फजीलत हमारे सामने आई। तो रसूल से इन लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आया, तो हुजूर अकरम ने यह जवाब इनायत फरमाया कि अगर ये तो 40 जगह थी, अगर 1000 जगह भी होती तो अली के अपने अभी तालिब उन 1000 की 1000 जगहों पर पहुंच जाते और जाहिर हो जाते। और दूसरा जवाब जो था, जो लॉजिक वालों के लिए मैं समझता हूं कि बड़ा अपीलिंग हो सकता है अगर कोई समझना चाहे तो वो जवाब यूं था कि रसूल ने पूछा कि तुम बताओ तुम कहां रहते हो, यमन, तुम कहां रहते हो शाम, तुम कहां रहते हो कूफा, तुम कहां रहते हो हिजाज, तुम कहां रहते हो फुलां, जी जितने भी इलाके हैं हुजूर अकरम ने अपने दौर के अंदर पूछा कि तुम कहां रहते हो, यहां रहते हो, मदीना रहते हो फुलां, का तुम ये बताओ मदीना में सूरज नजर आता है, बिल्कुल, हिजाज में सूरज नजर आता है, जब सूरज निकलता है तुम देखते हो, नजर आता है तुम्हें, हां आता है, मक्का में रहने वाले भाई तुम्हें सूरज नजर आता है जब ये सूरज निकलता है, कहां नजर आता है भाई, इराक के अंदर करबला में रहने वाले तुम्हें नजर आता है सूरज जब सूरज निकलता है, हां, नजफ में रहने वाले तुम्हें नजर आता है, हां नजर आता है, जब एक सूरज इतनी सारी जगहों से एक वक्त में जब तुलू होता है तो करोड़ों जगह से करोड़ों लोग उसे एक ही वक्त में देखते हैं, तो वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस अली की मोहब्बत में ये सूरज अल्लाह ने खल किया है वो एक वक्त में इतनी सारी जगहों से देखा जा सकता है, तो फिर अली की इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सिर्फ 40 घरों पर नजर आए हैं। ये वो हस्तियां हैं कि जो मुहित हैं, मुहित हैं, फैली हुई हैं, लिहाजा एक वक्त में ये मुतअद्दिद जगहों से नजर आ सकती है, और ये खुदा ताला की तरफ से इनको अता किया हुआ एक ऐसा इख्तियार और एक ऐसी ऐसा तसर्रुफ है कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम एक वक्त में 40 जगहों से नजर आए। तुम मक्का में रहकर सूरज तुम्हें नजर आता है, आता है, तुम फला जगह पे रहते हो मदीना में जब सूरज निकलता है तुम्हें नजर आता है, एक ही वक्त पर सूरज निकलता है मगर तुम्हें भी नजर आता है, 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 अली इब्न अबी तालिब भी इसी तरह से एक ही वक्त में तुलू हुआ मगर नजर 40 के 40 जगहों पर आया। अजीजाने मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इन्हें जो मकाम और मनसब इनायत फरमाया है जिसे मकाम खिलाफत इलाहिया मनसब इलाहिया कहा जाता है, तो उस मनसब के तकाजे के तौर पर जो विलायतें और जो तसर्रुफात थीं वो भी उन्हें अता की हिदायत के कामों के लिए, ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं जो परवरदिगार आलम ने अता की। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैसे वो कहते जाएं उस तरह से हम उनके कहे पर अमल करते जाएं और अपने आप को एक भिखारी की तरह से, एक फकीर की तरह से, एक गुलाम की तरह से, गुलाम, एक छोटे से गुलाम की तरह से, छोटा सा गुलाम क्यों कहता हूं कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर उनकी आवाज भी बुलंद हो जाए तो इंसान फौरन मुतवज्जो होकर खड़े हो जाए, खड़ा हो जाए और पूछे मौला आपने कुछ इरशाद फरमाया, मौला कोई हुक्म है हमारे लिए। परवरदिगार हमें नसीब करे कि हम कल्बे नाज़िनीन इमाम मासूम अलैहिस्सलाम को राजी कर सकें, उसको खुशनूद कर सकें, और परवरदिगार आलम हमें वो इनायत करे ईमान की दौलत कि हमारे दिलों में इताअत इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़्यादा चमक के साथ, भरपूर अंदाज के साथ आए, और हम यही पैगाम अपनी नस्लों को भी दें कि याद रखो ऐ बच्चों, किसी भी गैर के दर पर कभी ना जाना, इसलिए कि जब तक तुम दरे अहले बैत पर रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते, जब तक तुम अहले बैत अथार की हदीसों का मुतालाआ करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, मगर जहां तुमने अपनी अकल को अहले बैत की हदीसों पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू की, जब भी तुमने लॉजिक को अहले बैत अथार की हदीसों पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू की, जब भी तुमने मुझे ऐसा लगता है बोलने वालों को अहले बैत पर फजीलत देना शुरू कर दी, तो याद रखना अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के दर से खुद को दूर पाओगे, और अल्लाह से हमेशा यही दुआ करना, बारे इलाहा कभी कोई ऐसा शैतान ना हो कि जो आकर मुझसे अहले बैत की मोहब्बत छीनने की कोशिश करे और कामयाब हो जाए, कभी ऐसा ना हो। ऐ खुदा हमेशा मुझे इस दर पर कायम रख, साबित कदम रख, मैं, मेरी नस्लें, मेरी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद और नस्लों तक कभी भी दर अहले बैत से जुदा ना हो, कभी इस दर से दूरी ना आए। बस अजीज़ान मोहतरम, विलायतो इख्तियारातो तसर्रुफाते अहले बैत अथार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत का ये इख्तियार और उनका ये तसर्रुफ जिस तरह से अजीम है, जिस तरह से बड़ा है, जो उनकी मंजिलत जितनी बड़ी है उतनी बड़ी मुसीबत उन पर आई है। अजीजों, कभी बाजारों में लेकर आया जाता है, कभी दरबारों में लेकर आया जाता है, कभी चादरों को छीना जाता है। मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपने बाबा के जख्मी जिस्म को देखते हैं और इतना शिद्दत के साथ मौला गिरिया फरमाते हैं, इतनी शिद्दत के साथ मौला गिरिया फरमाते हैं कि हाथ पसे पुश्त रसन से बीबी के बंधे हुए हैं, बीबी बिनती अली के। और एक मर्तबा देखा है कि भतीजा सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ऐसा गिरिया कर रहे हैं अपने बाबा के बेसर और बेकफन के लाशे को देखकर कि करीब है कि सैयद सज्जाद की रूह परवाज कर जाए। सोचा कि कैसे सैयद सज्जाद को बचाऊं। इतने में बीबी जैनब कुबरा ने खुद को पुश्तनाका से जमीन पर गिरा दिया, और जैसे ही बीबी ने खुद को जमीन पर गिराया तो काफिले को रोका गया। जैसे काफिले को रोका गया तो जनाब जैनब कुबरा ने कहा, बेटा सज्जाद सब्र कर, बेटा सैयद सज्जाद सब्र कर। हर मरहले पर बीबी बिनते अली ने मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की हिफाजत की है, मगर अजीजों शहजादी का सर अकदस ऐसे जख्मी हो चुका था कि बीबी के सर से खून हमेशा जारी रहता था मदीना वापस आने के बाद भी। पूछा गया क्यों, तो जवाब आया कि जब भी कोई बच्चा पुश्ते नाका से गिरता था तो कहीं वो टापों तले रौंदा ना जाए, इसलिए बीबी खुद को भी जमीन पर गिरा लिया करती थी कि काफिला रुक जाए। मगर अजीजों जब दरबार में हाजिर हुए हैं तो एक ऐसा मंजर है, ऐसा मंजर है कि जिसे क्या बयान किया जाए। अजीजा ने मोहतरम, किसी ने मदीना में मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा कि आका आपके गले में खारदार तौक था मौला। खारदार तौक किसे कहते हैं, जिसमें अंदर से खार हो, कांटे हो और अंदर की जानिब कांटे निकले हों, यानी कि मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम अपना सर, अपनी गर्दन को हरकत ना दे सकते हो, मगर फिर भी आका सैयद सज्जाद का सर अकदस झुका हुआ था। का मौला आपका सर झुका हुआ था यह खबर मिली, मगर जब सरकार मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम गरीब मजलूम सफीर हुसैन जब कूफा पहुंचे हैं, दरबारे मलऊन के अंदर हैं, तो एक मर्तबा सीने को ताना हुआ है, चेहरे को उठाया हुआ है, और मौला 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 जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के खुतबा देते हैं और कहते हैं कि तू ये गलत समझता है कि तू हमें कत्ल कर देगा, मगर आका जब आपको देखा, आपका सर झुका हुआ, आपकी गर्दन झुकी हुई, आपका सर उठता ना था मौला। आका सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने इंसाफ ना किया। ए सवाल करने वाले, जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील दरबार कूफा में गए थे तो अकेले थे, अरे जब मैं आया तो माँ फूफी बहने मेरे साथ हैं, नबी जादियां और अली जादियां मेरे साथ हैं, मगर हाँ अजीजों एक दरबार में ऐसा भी हुआ कि लई ने एक एक बीबी को नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया, पूछने लगा ये बीबी कौन है, फिर इशारा करके पूछने लगा बीबी कौन है, फिर एक बीबी की तरफ इशारा करके मलून पूछ था ये बीबी कौन है, अरे यहां तक के कहने लगा मुझे तुमने तारुफ नहीं कराया, अरे अली की बेटी भी तो इसी दरबार में होगी ना, मुझे बतलाओ वो कहां है, मुझे उस अली इब्ने अबी तालिब की बेटी का चेहरा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस ये होना था, एक मरतबा हर बीबी जनाब जैनब कुबरा के सामने आ गई, यहां तक के जनाब फिजा ताजियानों को बुलंद किया गया, तलवारों को नियामों से निकाला गया, कहा गया है फिजा सामने से हट जाओ वरना तलवारें चल जाएंगी। ये सुनना था एक मरतबा जनाब फिजा ने कहा है हबशा से ताल्लुक रखने वालों, हे गुलामों तुम्हारी नामोस पर तलवार उठाई जा रही है, कुछ लम्हों बाद सर को तन से जुदा भी कर दिया जाएगा, तुम्हारी गैरतें कहां रह गई है। ये सुनना था एक मर्तबा हबशी गुलामों ने अपनी तलवारों को नियामों से बाहर निकाला, आगे आने के बाद कहते हैं ए शख्स अगर खबरदार हमारी नामूस की जानिब तलवार उठाई गई है, कोई दुर्रा चलाया गया है, अगर निगाहें उठी हैं तो याद रखना यहां पर खून की नदियां बह जाएगी। मगर है ये जुमला सुनना था एक मर्तबा दिले जैनब कुबरा टूट गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, बीबी जैनब ने रोकर मदीना का रुख किया, कहा नाना तेरे घर की कनीजों का जितना एहतराम मगर हाय तेरी बेटी जैनब लईनों के दरबारों में बाजारों में बेचादर के लायक। ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह से मकबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार जो कुछ पढ़ा गया ऐ खुदा ये तौफीक इनायत फरमा कि हम सब उस पर अमल पैरा हो सकें। बार इलाहा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के कल्ब मुतहर को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा, हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हज़रत के सदक़े में हमारे मरहूमीन की कब्रों पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा, हज़रत के सदक़े में हम सब के रिज़्क़ मारिफत में इजाफा फरमा। परवरदिगारा हमारे दिलों को ऐसे नरम कर दे कि जब भी नाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आया करे तो हमारी आँखें नम हो जाया करें। परवरदिगारा तो बड़ा करीम है, अपनी हुज्जत अपने वली इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आका व मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।